शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा सुखमय बने तारा जहां, तारा जहां।
नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में। दर्शकों, ये एपिसोड खास उन भाई बहनों के लिए है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, क्योंकि अक्सर करके हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं, चाहे सरकार है या कोई सामाजिक संगठन है, संस्थाएं हैं, वो तत्पर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी पिछड़ जाते हैं। तो क्या आध्यात्मिकता के प्रस्पेक्टिव से, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से उन सभी समस्याओं का समाधान है? पिछले एपिसोड में भी हमने ये बात की थी और आज फिर से हम इस एपिसोड में भी उन समस्याओं को फिर से लेंगे। हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज की रूरल सर्विस विंग यानी ग्रामीण प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय सरला दीदी जी। दीदी, आपका फिर से आज के इस एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी बहुत सारे पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला था और चर्चा भी की थी, तो हम ये जो डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं इसमें सबसे पहले जो हमारा पहलू है वो लेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि अक्सर करके जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना सचेत नहीं रहते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या डाइट खाना चाहिए। जैसे पिछले बार भी हमने सराउंडिंग्स की बात की थी, तो हेल्थ इश्यू से रिलेटेड आप उनको क्या एडवाइस करेंगे?
गांव के अंदर अशिक्षा होने के कारण इस चीज का बहुत अभाव है। हमने भी कई गांव के अंदर भारत के विभिन्न प्रांतों में जब इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया तो गांव में ऐसे लेक्चर्स और उनके द्वारा उन महिलाओं के अंदर जागृति, जिससे उनको ये महसूस हो कि हम अपने बच्चों को जो खुराक भोजन दे रहे हैं उसमें उनकी पोषक तत्वों की कमी है
जी।
तो इस प्रकार से हम स्कूल्स के प्रोफेसर्स को या कई संस्थाओं के लोगों को बुला करके लेक्चर्स का भी प्रोग्राम रखते हैं, साथ ही साथ में मेडिकल चेकअप, फ्री चेकअप कराना और जागृति उनके अंदर में आए, उनके लिए फ्री दवाइयों की व्यवस्था देना जिससे उनके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। लेकिन विशेष महिलाओं के अंदर ये जागृति लाने के लिए कुछ महिला मंडल भी इस प्रकार के बनाए गए और उन महिलाओं को हर वीक में कोई ना कोई प्रकार के ये लेक्चर्स, प्रैक्टिकल उनके साथ में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम का आयोजन करना, जिससे वो उस बात को महसूस करें कि हमारे बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और फिर फ्री उनको फूड के इस प्रकार की दवाइयां भी देना, ये कार्यक्रमों का आयोजन प्रभाग के द्वारा।
तो ये जो आपने कार्यक्रम आयोजित किए तो उनमें आपने क्या क्या पहलुओं पर ज्यादा फोकस किया, क्या क्या आपने उन लोगों को हेल्थ टिप्स बताए या फिर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी?
कई महिलाएं गर्भस्थ अवस्था के अंदर में
जी,
उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी जागृति और उनको जो खुराक लेना चाहिए। गांव के अंदर में हमने देखा कि जब ये लोगों को पता पड़ता है, जहां बच्चा होता है तो बच्चे के प्रति बड़ी ऊंची भावनाएं होती है, और जब बच्ची पैदा होती है तो उस ग्रामीण महिला का स्तर सामाजिक दृष्टि से वहां के परिवार के लोग जो है हीन मानते हैं, तो उनको जो खुराक मिलनी चाहिए उस खुराक को भी पूर्ण रीति से नहीं देते हैं। तो पहली बात हम इस बात पर उनका ध्यान खिंचाते हैं कि बच्चा हो या बच्ची, ये दोनों ही समाज के अभिन्न अंग हैं, उनके प्रति समानता की भावना, और महिला को जिस खुराक की आवश्यकता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो उनको दिए जाएं।
लेकिन अक्सर करके हम गांव में देखते हैं यदि कोई घर में बीमार हो जाता है, चाहे बच्चा बीमार हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हम लोग जो है तंत्र मंत्र की तरफ चले जाते हैं, अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे की बलि दे दी तो हमारे घर की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी, फलाने संबंधी की जो हेल्थ है वो ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे कि ये तंत्र मंत्र वाला जो रास्ता है ये उचित नहीं है?
ये एक ऐसा दीमक के जैसे है
जी,
जैसे किसी पत्ते पर दीमक लगी हो लेकिन धीरे 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 वो पत्ते को नष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से ग्रामीण समाज के अंदर तंत्र मंत्र जादू टोने ये धीरे धीरे उस समाज को खत्म कर रहे हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य एक अलग चीज है, जादू टोना। लेकिन लोग समझते हैं, ग्रामीण लोग, कि कम खर्च से हम अपने स्वास्थ्य को बच्चों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए उस खर्च से कहीं अधिक महंगा पड़ता है
जी।
तो उसके लिए जागृति के कार्यक्रम, उनको ये समझाना कि वास्तव में स्वास्थ्य जहाँ खराब है तो आवश्यकता दवाई की है, जादू टोने से बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। मुझे याद है एक गांव के अंदर में एक माता को पैरालिसिस हुआ और उसी समय हम लोग वहां पर पहुंचे थे। तो उस गांव के लोग इकट्ठे होकर के कि हमारी इस माता के अंदर में माता जी आई है
जी,
घी का दिया करके बैठे हुए थे, चारों तरफ से लोग हाथ जोड़ रहे थे, माता जी कह रहे थे। अचानक हम लोगों का जाना हुआ तो देखा वो महिला तड़फ रही थी क्योंकि उसको पैरालिसिस हुआ था, उसके कारण उसकी जीभ बाहर आ गई थी और जीभ से पानी निकल रहा था। तब उसके पति को सूचना दी, पति उनको लेकर के हॉस्पिटल गए। तब डॉक्टर ने बताया कि यदि इस महिला को आधा घंटा और लेट किया होता था तो उसका जीवन खतरे में है। तो वहां पर उसके स्वास्थ्य को बचा सके और उसके परिवार और गांव के लोगों को भी फिर बाद में समझाया कि ये माताजी भगवान इस प्रकार से नहीं आते हैं, भगवान की तो सिद्धि के लिए हम लोग उसको याद करते हैं, ये जादू टोना तंत्र मंत्र से हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है।
तो कहीं ना कहीं शायद हमें वो जो पुरानी जो कुरीतियां हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। और कुरीतियों से मुझे याद आता है कि गांव में अक्सर करके कुरीतियां बड़ी रहती हैं। ऐसी प्रथाएं हैं जो आज तक प्रचलित है, हम टीवी में भी देखते हैं, सुनते भी हैं, अखबारों में देखते हैं कि ऐसी ऐसी कुरीतियां हैं। पता लगता है कि घर में बच्चे का ऐसा शोषण कर दिया या बहू का ऐसा कुछ कर दिया, तो कितना उन आत्माओं को भी कितना झेलना पड़ता है, उन व्यक्तियों को, महिलाओं को कितना झेलना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या हमारे ग्रामीण इलाकों वाले लोग जो है उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कुरीतियां जो है, प्रथाएं हैं, इनको छोड़े और अपनी मानसिकता सोच में वो परिवर्तन लेकर आए?
मानसिक सोच के लिए महिला जो समाज की एक धुरी है
जी,
और सचमुच जब हम ग्रामीण महिला शब्द कहते हैं तो हमारे मानस पटल पर एक इतनी सुंदर स्मृति उभर आती है कि महिला केवल जन्मदात्री नहीं है लेकिन वो जीवनदात्री भी है और अन्नदात्री भी है
जी।
वो घर की महिला एक धुरी है परंतु ग्रामीण महिला वो समाज की धुरी है। एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, उसने महिला के लिए ये कहा है कि पता नहीं भगवान ने कितनी फुर्सत से इसको बनाया होगा, इस अनोखी मिट्टी को वो कहां से लाया होगा, इतनी सुंदर प्रभु की ये आकृति परंतु ग्रामीण परिवेश में इन कुरीतियों में फंसकर अपने उत्तरदायित्व को वो भूल गई है। तो जब हम उनके बारे में उनको जागृत करते हैं कि वास्तव में तुम तो एक देवी हो, तुम एक शक्ति हो, न कि तुम इन जादू टोनों के वश होकर के अपने परिवार को नष्ट कर रही हो, तो आंतरिक जागृति के साथ साथ में और परिवर्तन उनमें आता जाता है। फिर आध्यात्मिकता के आधार पर उनको ये समझाया जाता है, विज्ञान के जो वर्तमान समय साधन है उन सब के आधार से भी उनको बताया जाता है, तो काफी चेंजेस है
जी। जैसे हम जातिवाद की भी बात करते हैं और कास्टिज्म की बात करते हैं, ये चीज बहुत देखने में आती है कि मैं फलानी जाति का हूँ, तुम इस जाति के हो, तो उसके प्रति जो नजरिया है वो हीन भावना का होता है, हीन दृष्टि का होता है। तो ऐसे में आप क्या बताएंगे कि कैसे हम ये सोच में परिवर्तन लेकर आए?
उनको हम बताते हैं कि ये जो भी देह के धर्म है ये विनाशी धर्म है। हम एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। एक पिता की संतान है, भले आज दिन तक हम कहते आए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन वो भाईचारा हमारे अंदर नहीं आया
जी।
उसका मूल कारण रहा कि हमने अपने आप को नहीं पहचाना, सिर्फ कहा। जब हम अपने इस स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं आत्मा भाई हूँ, ये हमारा परिवार है, तब उनके अंदर में परिवर्तन आता है
जी। जैसे जातिवाद और धर्मवाद की भी जैसे हमने बात की है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है वो है एडिक्शन। गांव में अक्सर करके जो लोग हैं तंबाकू, हुक्का, सिगरेट, शराब, बहुत सारे व्यसनों से वो ग्रस्त हैं, और इसी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, घर में तनाव का वातावरण, बच्चों पर असर। तो आप एडिक्शन से संबंधित क्या बताना चाहेंगे कि क्यों ये इतना हार्मफुल है, इसको छोड़ना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है।
वर्तमान जीवन में जब व्यक्ति समस्याओं से घिर जाता है, तब अपने आप को समस्या से मुक्त करने के लिए इन चीजों का आधार लेता है, और उनका आधार लेकर के वो समझता है कि मेरी समस्या हल होगी या मेरे जीवन में शांति आएगी, लेकिन दिन प्रतिदिन व्यक्ति नीचे उतरता जाता है। इसका समाधान हम उनको व्यसनों से, जो हमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में, चाहे वो प्रोजेक्टर शो के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, कई बार हम लोग डॉक्टर्स को बुला करके भी उन लोगों को समझाते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आती है, और जब महसूस करते हैं कि इन परिवारों के अंदर व्यसनों के कारण जो एक सुखी समृद्ध परिवार था, जब शराब, बीड़ी, सिगरेट उस परिवार के अंदर प्रवेश हुए, बच्चों का चरित्र भी बिगड़ गया, परिवार की आर्थिक जो स्थिति थी वो भी खराब हो गई, तो उसका मूल कारण रहा व्यसन। और इन व्यसनों से मुक्ति का जो आधार है वो राजयोग है। आप इस आधार से अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करें, और जब वो उस राजयोग को अपनाते हैं, तब धीरे धीरे व्यसनों से मुक्त होकर के सच्चे सुख और शांति का जीवन में अनुभव करते हैं, तनाव से मुक्त होते हैं, क्योंकि तनाव का मूल कारण कहां तो आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान व्यसन नहीं है, उन समस्याओं का समाधान है व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आना, एक दो को समझना, और समझ करके समानता से उसके ऊपर में कोई ना कोई निर्णय लेना। तो आध्यात्मिकता से ये मूल्य जागृत होते हैं, और पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी सहज रीति से कर पाते हैं।
मुझे एक गांव का नजारा भी याद आता है। हम जब भी कहीं जा रहे होते हैं, बसेस में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पेड़ों के नीचे हमारा जो पुरुष समाज है वो हुक्का पी रहा होता है, और घर की महिलाएं जो है वो काम कर रही होती हैं, खेतों में जाती है, सब कुछ करती हैं, और जब हम कभी उनसे बात भी करते हैं तो वो कंप्लेंट करती हैं कि इनको तो कोई काम है नहीं, बस ये पूरा दिन सुबह से शाम तक हुक्का पीना है या जुआ खेलना है, और हम सारी घर गृहस्थी की जिम्मेवारियां निभाती हैं, बच्चों को पालती है, खेतों में जाती हैं, और पशुओं का भी पालन पोषण है, उनको चारा देना, सब कुछ करती हैं। हम इनको समझाते भी हैं लेकिन ये मानते नहीं है, और इस वजह से बहुत बड़ा ये कारण है घर में कलह कलेश का। इस चीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं?
पुरुष वर्ग जो इसके अंदर अहम भाव बहुत है, और वो अपने आप को समझते हैं कि महिला ये कार्य के लिए है, वो खेतों में जा रही है, मेहनत कर रही है, और जैसे आपने बताया कि वो लोग हुक्का पी करके और इस रीति से अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, तो कहां कहां समाज के अंदर ये एक कुप्रथा भी है
जी।
वो समझते हैं हमारा जीवन यही है, लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि जीवन जीने की कला क्या है, वो किस प्रकार से आपके जीवन में आ सकती है, केवल हुक्का पी करके या जुआ ये खेल करके इसमें अपने जीवन को नष्ट कर देना, ये आपका जीवन नहीं है, उससे बढ़कर के भी कोई और जीवन है, उस जीवन की नॉलेज देना, और नॉलेज के साथ साथ उनके अंदर में, मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, राजयोग
जी।
इस विद्यालय का विशेष है राजयोग, जो उनकी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता है और उनमें महसूसता शक्ति आती है। तो काफी गांव के अंदर में राजयोग के माध्यम से अपनी शक्तियों को विकसित करके वो लोग जब महसूस करते हैं, तब जो उनके अंदर में एक शोषण की वृत्ति है, उस शोषण की वृत्ति में परिवर्तन आता है।
हमारा जो युवा वर्ग है वो भी हम देखते हैं एडिक्शन की तरफ बहुत चला जाता है, ऐसे क्या आध्यात्मिक मूल्य या फिर राजयोग, इन बातों को हम कैसे समावेश करके अपने अंदर धारण करें ताकि हम इन चीजों से मुक्त हो सकें?
युवाओं के अंदर में जो ये ड्रग्स ये सब बढ़ता जा रहा है
जी,
उसका एक कारण तो उनको नौकरी का ना मिलना है। हम ऐसे वर्ग को एकत्रित करके उनको कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क देते हैं। अपने गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उनके द्वारा शैक्षणिक प्रवृत्तियों में उनको इन्वॉल्व करते हैं। जब वो उन बच्चों के विकास के लिए अपना समय देते हैं तो उनमें भी चेंजेस आते हैं। जो खाली मन है वो शैतान का घर है। तो क्रिएटिविटी, और उस क्रिएटिविटी के साथ साथ में उनको अपने परिवार के लिए एक आर्थिक स्थिति के साधन क्या क्या हो सकते हैं, और इन व्यसनों से न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को कोई नुकसान है पर साथ साथ आपका सारा परिवार दुखी और अशांत होता है, उसके प्रति भी उनको अवेयर करते हैं जिससे वो लोग चेंज लाते हैं।
कई जो लोग हैं वो सोचते हैं कि एडिक्शन का एक कारण, वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, हम लोग बहुत रिच है, हमें कमाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, और अक्सर करके वो एडिक्शन को ये सोचते हैं कि ये तो हमारे घर की परंपरा है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे दादाजी परदादाजी वो सब भी पीते थे तो हम भी पी रहे हैं तो हमने क्या गलत किया है, ऐसे ऐसे वो कहते हैं। और हमारे पास तो इतना प्रॉपर्टी है, उनका उनको हेम रहता है, रिच है, तो इन चीजों को इतना वैल्यू नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे?
ये उनकी एक मानसिकता है जो कि पहले समय से ऐसा चला आ रहा है, इसलिए वो लोग उसी चीज को अपना रहे हैं। लेकिन हमने देखा है यदि वर्तमान समय जो हमारा शिक्षित युवा है उन लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए तो समझते हैं कि इससे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। भले हम रिच हैं
जी,
उसी संपत्ति को गांव के विकास के कार्य में, महिलाओं के विकास के कार्य में अगर वो लगाएं तो उनका गांव और ही सुखी समृद्ध हो सकता है। आज गांव में उनका परिवार सुखी और समृद्ध है, लेकिन इसी संपत्ति का यदि यथार्थ रीति से वो लोग उपयोग करें तो गांव सुखी समृद्ध हो सकता है, गांव उनका परिवार है, ये भावना उनके अंदर में जागृत की
जी। देखिए जैसे आपने स्कीम्स की भी बात की थी पिछले एपिसोड में, तो मुझे याद आ रहा है कि अक्सर करके स्कीम्स तो बहुत गवर्नमेंट बनाती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन कहीं तक ये योजनाएं जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में पिछड़ जाती हैं, पेपर वर्क तक ही वो बात रह जाती है। ये जो डिफरेंस आता है इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं?
इसको खत्म करने के लिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि गांव के संपूर्ण विकास के लिए एक है हमारे सरकारी अधिकारी जिनके पास सरकार की योजनाएं आती
जी,
उस योजना को उनको गांव के अंदर में क्रियान्वित करना है। हम जहां तक कई अधिकारियों के साथ में मिले हैं विभिन्न प्रांतों के अंतर्गत, तो उन लोगों का कहना ये है कि गांव के लोग हमको इसमें सहयोग नहीं देते हैं। हमको भी कहा कि आप लोग ये स्कीम है ले जाकर के करवाइए। तो ये जो आध्यात्मिकता है वो एक ब्रिज का काम करता है सरकार और गांव के बीच में। जब हम उस ब्रिज का काम करते हैं तो जो उनकी योजनाएं हैं उनके द्वारा गांव तक पहुंचाते हैं। और दूसरा हमने ये भी देखा कि गांव के लोगों का आध्यात्मिक लोग होने के कारण हम लोगों में विश्वास है, और उस विश्वास के कारण से उस बात को वो जल्दी स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि नहीं ये हो सकता है हमारे गांव के अंदर में। जैसे कुछ एक गांव के अंदर पानी के पीने की का अभाव था, तो सरकार की उस समय पर एक स्कीम थी 80-20
जी,
80% सरकार का सहयोग था, 20% गांव का सहयोग था। लेकिन वो लोग केवल 20% उनको गांव से फंड इकट्ठा करता था तो भी नहीं कर पाते थे क्योंकि गांव के लोगों में उनका विश्वास नहीं था
जी।
तब ब्रह्मा कुमारी के जो ब्रपाहक के भाई बहने थे उन लोगों ने एक ब्रिज का काम किया और कहा कि आप हमको ये फंड देंगे, हम आपके गांव के अंदर में इसकी व्यवस्था करेंगे। और उन लोगों ने बहुत अच्छी रीति से सहयोग दिया और उस पानी की व्यवस्था को हम कई गांव के अंदर में क्रियान्वित कर सके। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो नहीं हो पा रहा है उनका अब सरकार को उनको रिपोर्ट तो देना है, इसलिए उनका जो है ऑन पेपर है
जी,
और हम लोग प्रैक्टिकल हैं। इसी रीति से एक वर्ष था साक्षरता वर्ष, तो एक गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम थी, उनको किट्स तैयार किए गए, गांव गांव के अंदर दिए गए और बड़े अच्छे पेपर वर्क किया गया कि इस गांव के अंदर में इतने लोग साक्षर हुए हैं। जब हम लोगों ने वहां जाकर के देखा, ना उस नाम का व्यक्ति था ना कोई साक्षर था, लेकिन उन लोगों को जब पढ़ाया गया और ये बात समझाई गई, क्योंकि पढ़ते नहीं थे, उसका मूल कारण था कि बिना पढ़े भी हम लोगों को खेती करनी है, भैंसों को चराना है, तो पढ़ाई पढ़ करके इस एज में हम क्या करेंगे। तब उनको बताया गया कि केवल खेती और भैंस चराने से आप मुक्त होंगे, इसलिए शिक्षा नहीं है
जी।
शिक्षा का तो बहुत महत्व है और उन लोगों को शिक्षा की क्लासेस हम बहनों ने और भाइयों ने चलाए, उनको अक्षर ज्ञान दिया
जी
और प्रैक्टिकल वर्क किया। तो वो ऑन पेपर था, इन्होंने प्रैक्टिकल किया
जी। ये जो जितनी भी आपने हमें बातें बताई हैं, समस्या और उनका समाधान एक गांव में, तो क्या आपने ये भी बताया कि कैसे कैसे आप लोगों ने एफर्ट्स किए, योजनाएं जो है उनको इम्प्लीमेंट कराने में आपने सहयोग दिया, ये सब बातें, तो क्या एक ऐसा कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा आदर्श गांव का जो है सैंपल है वो प्रस्तुत किया कहीं पर?
हमने कई स्थानों पर गांव को एडॉप्ट किया है, महाराष्ट्र में भी कई गांव एडॉप्ट किए हैं
जी,
गुजरात भी है, अन्य और कोई कोई प्रांतों में भी किए हैं। मैं आपको गुजरात के एक गांव का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सबसे पहले जब हम उस गांव में गए तो वहां के सरपंच और जो अग्रगण्य व्यक्ति थे उनके साथ हमने संपर्क किया
जी।
कि हम आपके गांव को एडॉप्ट करके इसको स्वच्छ, स्वस्थ, साक्षर और स्वनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसमें हमको आपका सहयोग चाहिए। और वहां के 11 लोगों की एक कमेटी बनाई
जी,
और उस कमेटी के साथ में हमने चर्चा की और उसके पश्चात सरकार की भी कई योजनाएं थी जिन योजनाओं को हमने वहां क्रियान्वित किया। तो गांव का सर्वे करने पर हमने देखा कि उस गांव को कई चीजों की आवश्यकता थी, जैसे पेयजल, सड़क और पानी के लिए अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक, पुस्तकालय नहीं था, दूध मंडली की व्यवस्था नहीं थी, महिला मंडल, युवक मंडल, ऐसे हमने कुछ पॉइंट सर्वे करके वहां निकाले और उन गांव के अंदर में फिर इन एक्टिविटीज को किया, जिसमें गांव का बहुत ही सुंदर हमको सहयोग मिला और गांव के अंदर में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को निकालने में भी हम लोग सफल हुए। जैसे एक बारी उस गांव के अंदर में मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा महोत्सव था, सारे लोगों को इकट्ठा किया, भोजन ये वो, और उसी समय पर बीच में उन्होंने 1 घंटे के लिए ये आध्यात्मिक प्रवचन का कार्यक्रम रखा
जी।
तब लोगों ने इस बात को महसूस किया कि ये हम व्यर्थ का खर्च कर रहे हैं, खाना खिलाना, समय वेस्ट करना, इसकी जगह अगर वैल्यूज की हमको शिक्षा दी जाए तो हमारा गांव आगे जा सकता है। दूसरा, समूह लग्न उसको बोलते हैं, एक साथ में कई लोगों का मैरिज करते हैं, वहाँ उस गांव के अंदर में उस समय पर समूह लग्न का एक कार्यक्रम था, एक था शेड्यूल कास्ट में और एक था अपर कास्ट में
जी।
हमने दोनों जगह पर उनको ये कहा कि आपको जो दहेज दिया जाएगा उसके अंदर में सोने की चेन होगी, रिंग होगी, कान की बूटी होगी, लेकिन परमात्मा पिता आपको वो दहेज देते हैं, जो ये चेन अगर गुम हो जाएगी तो आप बेचैन हो सकते हैं
जी, बिल्कुल,
वो आपको सहनशीलता का गहना देते हैं, उस सहनशीलता को आप धारण करके अपने ससुराल में जाएंगे तो कोई कितना भी क्रोध करे लेकिन आप बड़ा शांति से उसको सहन करेंगे तो ये आपके जीवन में निखार लाएगा, ये सच्चा गहना है। तो परमात्मा की तरफ से हम आपको ये गहने मधुरता का, सहनशीलता का, हर्षित मुक्ता का ये गहने उपहार में देते हैं। पर सचमुच उस गांव के लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि हमने आज दिन तक ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा, हमारी बेटियों को इसी चीज की आवश्यकता है जो उनके जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है। तो गांव एडॉप्ट में इस प्रकार के कार्यक्रम भी किए हैं और फिर खेती के प्रति लोगों को जागरूक किया, आंवले की खेती वो उनसे कराई, फिर इफको को बुला करके किस प्रकार से अचार बनाना
जी,
मुरब्बा बनाना, इन सब चीजों की उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, फिर उनके सिलाई कढ़ाई इस प्रकार से, तो महिला वर्ग की एक आर्थिक उन्नति के लिए कई सारे कार्य किए और आज वो गांव बहुत सुंदर, सबसे पहले हमने स्वच्छता अभियान वहां किए हैं, सारा गांव स्वच्छ है, परिवार घर भी बहुत स्वच्छ है, महिलाएं अपने बच्चों को स्वच्छ रखती हैं, स्कूल्स में भी प्रोग्राम किए, बच्चों को नाखून काटना, जो थैला लेकर के आते अपना बैग, स्कूल बैग, उसको किस ढंग से रखना, ऐसी छोटी छोटी बातें सिखा करके आज वो गांव बहुत ही सुंदर एक आदर्श गांव के रूप में कई लोग उसकी मुलाकात के लिए भी आते हैं।
ये तो आपके जो एफर्ट्स है वाकई में ही बहुत काबिले तारीफ है, और मुझे उम्मीद है जो भी इस एपिसोड को आज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, और मुश्किल नहीं है कुछ भी यदि इंसान ठान ले तो। तो आज जो आपने जो बातें बताई हैं और जो चर्चा की है उसके लिए मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। तो आप लोग भी अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाकर समाज के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।